चौथा स्कंध 23वां अध्याय महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। श्लोक संख्या 6। ग्रीष्मे
पंचतपाह
वीरः
वर्षासु
मुनि आकंठ
आकंठ
मग्न
मग्न
शिशिरे
शिशिरे
उदके
उदके
स्थंडिलेशयः
स्थंडिलेशयः
ग्रीष्मे पंचतपावीरो
वर्षाश्वासारशान मुनिः
आकंठमग्नः शिशिरे
उदके स्थंडिलेशयः
ग्रीष्मे पंचतपावीरो
वर्षाश्वासारशान मुनिः
आकंठमग्नः शिशिरे
उदके स्थंडिलेशयः
ग्रीष्मे पंचतपावीरो वर्षाश्वासारशान मुनिः आकंठमग्नः शिशिरे
उदके स्थंडिलेशयः ग्रीष्मे पंचतपावीरो
वर्षाश्वासारशान मुनिः
आकंठमग्नः शिशिरे उदके स्थंडिलेशयः
ग्रीष्मे पंचतपावीरो
वर्षाश्वासारशान मुनिः
आकंठमग्नः शिशिरे
उदके स्थंडिलेशयः
ग्रीष्मे पंचतपावीरो
वर्षाश्वासारशान मुनिः
आकंठमग्नः शिशिरे
उदके स्थंडिलेशयः
ग्रीष्मे गर्मी के ऋतु में पंचतपाह
पांच प्रकार के ताप
वीर
वर्षासु
वर्षा ऋतु में
आसार शाट
वर्षा की झड़ी की पहुंच में रहकर मुनियों की तरह आकंठ
गले तक
मग्नः
डूबे हुए
शिशिरे
जाड़े में
उदके
जल के भीतर
ठंडिले शयः
फर्श पर लेटे हुए
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में वे वर्षा की झड़ी में बाहर ही रहे और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। तात्पर्य, जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो सकें। पंच तपाह से पांच प्रकार की अग्नियों का बोध होता है। इस विधि में मनुष्य को अग्नि के वृत्त के भीतर बैठना होता है, जिसकी लपेटें चारों ओर से निकलती हैं और सिर के ऊपर से सूर्य सीधे दहकता रहता है। तपस्या के लिए निर्धारित पंचतपाह में से यह एक प्रकार है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में मनुष्य को वर्षा की झड़ी में रहना होता है और शीत ऋतु में गले तक ठंडे पानी में बैठना होता है। जहाँ तक एक बिस्तर का सवाल है, तपस्वी तो भूमि पर लेटना होता है और ऐसी कठिन तपस्या का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। ओम ज्ञान दिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीचैतन्यकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो श्लोक में गोकुल धाम के निवासी किस प्रकार से रहते हैं उसका वर्णन है, क्योंकि इस तरह की तपस्या आप सब करते हैं ना? नहीं करते? सबको डर हो गया, डर लग गया एकदम। नहीं, करना भी नहीं चाहिए, ये भक्तों के लिए नहीं है। केवल जो योग और ज्ञान मार्ग के उपासक होते हैं उनके लिए है। ये अति तपस्या भक्तों के लिए नहीं होता। जैसे पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे, भक्तों की तपस्या, भक्तों का वैराग्य, ये मध्यम वर्ग का होता है। जिनकी तपस्या और विरक्ति बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, तो वो कर्म मार्ग के लिए अधिकारी व्यक्ति होते हैं। जिनकी विरक्ति और तपस्या अति होती है, वो ज्ञान मार्ग के लिए या योग मार्ग के लिए अधिकारी व्यक्ति हो जाते हैं। तो हर एक कार्य के लिए, हर एक किसी परिस्थिति के लिए या स्थान के लिए एक योग्यता या अधिकार की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि किसी को ग्यारहवें कक्षा में प्रवेश करना है तो उसके लिए अधिकार क्या चाहिए? दसवीं कक्षा में पास होना चाहिए, तब वो ग्यारहवीं कक्षा में जाएगा। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या आवश्यकता है? किसी को मेडिकल शिक्षण प्राप्त करने के बाद ही वो डॉक्टर बनने की योग्यता होती है। तो हर एक चीज़ के लिए एक अधिकार होता है ना, या योग्यता होती है। तो उसी प्रकार से कौन है वो व्यक्ति जो भक्त बन सकता है? भक्त बनने के लिए क्या आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कौन भक्त बन सकता है? कौन अधिकारी है भक्त बनने के लिए? अभी हम सबको अनुभव है कि हम तो प्रचार खूब करते हैं, अनेक लोगों को भगवान कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में बतलाते हैं, परंतु क्या उनमें से सभी लोग हमारे उपदेशों को ग्रहण करते हैं? क्या सब लोग भक्त बन जाते हैं? नहीं बनते। थोड़े लोग भक्त बनते हैं, थोड़े लोग भक्त नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो कौन से ऐसे चीज़ों की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अधिकारी बन जाता है भक्ति में आने के लिए, आप बताइए। अधिकार क्या है भक्ति में आने के लिए?
श्रद्धा।
हाँ सही बात है। और थोड़े विस्तार में? हाँ सुकृति, अर्थात ये श्रद्धा कहाँ से आती है? एकदम ऐसे किसी के अंदर कैसे श्रद्धा आ जाती है? जैसे कोई व्यक्ति श्रद्धालु है, भक्ति में नहीं है वो, परंतु उसके अंदर श्रद्धा है, किसी के अंदर नहीं है। तो उसके अंदर श्रद्धा क्यों है?
वैष्णव की सेवा की है, भगवान की सेवा की है।
क्योंकि अच्छा, श्रद्धा किस चीज में? श्रद्धा
भक्ति
में। श्रद्धा अभी भक्ति में श्रद्धा कहाँ से मिलती है?
भक्तों
से मिलती है, और कहीं से नहीं मिलती। एक ही स्थान है भक्ति में श्रद्धा प्राप्त करने के लिए, और वो है भक्तों का संग। हमें जब कोई चीज को प्राप्त करना है तो केवल उसी स्थान से हम प्राप्त कर सकते हैं जहां पर वो उपलब्ध है। यदि वहां पर कुछ है नहीं, जैसे हम पानी खोजने के लिए जाए, रेगिस्तान में जाए, तो मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। उसी प्रकार से हमें यदि श्रद्धा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे वो उपलब्ध है। तो भगवत श्रद्धा, भक्ति की श्रद्धा कहाँ पर उपलब्ध है? एक ही जगह उपलब्ध है। श्रद्धा श्रद्धा से आती है, भक्ति भक्ति से आती है। तो भक्ति कहाँ है? भक्ति के पात्र कौन है? आते कुछ वस्तु सटी मतलब भांडे पाहिजे ना, वरण ठेवायला, पाणी ठेवायला, भात ठेवायला का भांडे पाहिजे मला। तसंच श्रद्धासाठी भांडे काय, ते पात्र काय, कोण आहे? भक्त। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वही भक्ति के पात्र होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे भक्तों से संग करता है तो जो उस व्यक्ति के अंदर है वो मिल जाता है। ये संग का सिद्धांत है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उपदेश देते हैं हरि भक्ति सुधोदय में। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मणि होती है, स्फटिक या मणि, वो अपने पास में रखे हुए कपड़े या किसी परिसर का जो रंग है उसको दिखलाती है। यदि मणि के पास हरे रंग का वस्त्र हो तो वो मणि हरे रंग का दिखता है, पीले रंग का वस्त्र हो या वातावरण हो तो मणि पीले रंग का बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हिरण्यकश्यप दे रहे हैं संग के ऊपर, और इसकी व्याख्या ये उपदेश अमृत भक्ति रसामृत सिंधु में पाया जाता है कि संघ का क्या महत्व होता है। और इसकी पुष्टि करने के लिए रूप गोस्वामी हिरण्यकश्यप का प्रमाण देते हैं। यद्यपि आप पूछेंगे कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा असुर था तो उसके वाणी को क्यों बता रहे हैं रूप गोस्वामी, क्योंकि कभी कभी असुर लोग भी एक आध बार गलती से कुछ सही बात बोल देते हैं। तो यदि वो सही बोल देते हैं तो उसमें कोई दोहराने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, परंतु केवल बहुत कम करना चाहिए। वो हमारे अधिकारी, हमारे गुरु नहीं है, वो हमारे आचार्य नहीं है। जैसे कभी कभी प्रभुपाद जी कबीर आदि ऐसे संतों के वाणी को भी दोहराया करते थे। जैसे कि उन्होंने कहा है कौन सा है वो, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में यदि हरि भजे तो दुख कहाँ से होए। ये सुना है आपने, दोहा है कबीर का दोहा। आपने पाठशाला में हिंदी विषय पढ़ा होगा ना, सबने हिंदी विषय पढ़ा है पाठशाला में? नहीं, शाळे मध्ये हिंदी विषय असत नाही, असत ना, इकडे नसतो, मराठी कन्नड हिंदी नसत। अच्छा अच्छा, तो ये कबीर का दोहा है। क्या मतलब है इस दोहे का? दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे ना कोई। ज्यावेळी कोणाला काय कष्ट होतं देवाकडे जातात, देवा वाचवा वाचवा, ज्यावेळी सगळं काही ठीक असतं भगवंताला विसरून जातात, काही गरज नाही भगवंताची। इसलिए कबीर बोलते हैं दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। सुख में जो हरि भजे तो दुख कहाँ से होए। तो यदि व्यक्ति को दुख में, दुख से बचना चाहे बचना है तो उसको सुख में भी हरि का भजन करना चाहिए। जब सुख में हरि का भजन करेगा तो दुख आएगा ही नहीं। तो ये कबीर बोलते हैं। वैसे कबीर भक्त नहीं है, कबीर मायावादी है। कबीर के वचनों से हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी एकाध बार ऐसे कुछ सही बात बोल देते हैं तो उसको प्रभुपाद ने लिया। परंतु ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी बार बार कबीर को आचार्य समझकर उनकी वाणी को दोहराते थे, जैसे कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बातों को दोहराए, ऐसे नहीं। एक आध बार कभी किसी को दोहराई। और एक बात कबीर ने कही थी जो गलत है, परंतु गलत विचार कैसे होते हैं इसको सिद्ध करने के लिए भी प्रभुपाद जी ने कबीर के दोहे को बताया था। वो क्या था, पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्योंकि वो अच्छा विग्रह को नहीं मानते थे कबीर। ये पत्थर की मूर्ति है तो सोचते थे कि पत्थर को पूजने से यदि हरि मिले तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा, पहाड़ तो पत्थरों का इतना बड़ा है, जो पहाड़ को पूज लो। हाँ, भले गोवर्धन को पूजे तो ठीक है। तो कबीर के इस तरह के भी गलत चीज है। हाँ, इसलिए जब कोई एक बात, संत भारत में समस्या ये है कि सारे संतों को एक समान सब समझते हैं, सब लोग साधु संत हैं, सबके चित्र घर में रखते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको महान मानते हैं। वो वैसे ज्यादा कबीर वैदिक सभ्यता को भी नहीं मानते थे। एक बार क्या हुआ कि कबीर अपने घर के बाहर ऐसे पानी डाल रहे थे, तो किसी उनके पड़ोसी ने पूछा कि अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप घर के बाहर आके पानी क्यों डाल रहे हो ऐसे जमीन के ऊपर। तो कबीर ने कहा मेरे खेत में पानी दे रहा हूँ मैं। तो आपका खेत कहाँ है, आपका खेत तो इतना दूर है, बहुत दूर है उधर, तो खेत वहाँ है तो आप यहाँ पानी क्यों दे रहे हैं। तो कबीर ने बोला कि मेरे जो पूर्वज हैं वो कब के शरीर छोड़ के चले गए, अब वो कहाँ है क्या जाने, किस दुनिया में है, किस योनि में है, किस लोक में है, नहीं पता। तो हम इधर पिंड तर्पण आदि और जल अर्पण करते उनके लिए, तो वो कहाँ चले गए और हम यहाँ कैसे अर्पण करते। यदि ये जल मेरा जो यहाँ दे रहा हूँ वो उन तक पहुँच रहा है, तो मेरा जल यहाँ खेत में क्यों नहीं पहुँचेगा, समझ रहे हैं? वो क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ, ये पिंड तर्पण आदि नहीं करना चाहिए। तो उनको ये सब चीजों में विश्वास नहीं था, वैदिक सभ्यता के बारे में पता नहीं था, पता था लेकिन विश्वास नहीं था। तो इसलिए जब कभी प्रभुपाद जी कबीर की बात बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कबीर हमारे लिए अधिकारी व्यक्ति बन गए कि हम कबीर के बातों को दोहों को दोहराएंगे। एक आध बार कभी कुछ किसी ने कह दिया तो प्रभुपाद ने उनको कह दिया। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने भी हिरण्यकश्यप की बातों को एक उदाहरण देके कह दिया, क्योंकि वो सही बात कही थी। परंतु इसका मतलब नहीं कि रूप गोस्वामी के लिए हिरण्यकश्यप एक अधिकारी व्यक्ति बन गए, आचार्य बन गए, ऐसा नहीं। तो कभी कभी हम लोग भी बाहर के लोगों की बातें भी, कोई भौतिक लोग होते वो भी कोई अच्छी बात कह देते हैं तो हम उनका कोई एक वाक्य लेके बोल देते हैं, परंतु वो हमारे लिए अधिकारी व्यक्ति नहीं होते हैं। एक आध बार कभी उन्होंने कुछ सही बात कह दी तो ठीक है, आम्हाला पटलं, आमच्या मध्ये बसलं, भक्तीमध्ये आम्ही तर बोलतो, परंतु ह्याचा अर्थ हे नव्हे की ते आमच्यासाठी अधिकारी व्यक्ती झाले म्हणून, आमचे आचार्य झाले म्हणून, असं नाही आहे। तो हिरण्यकश्यप क्या बोलते हैं कि संग ऐसा है, जैसा संग वैसा रंग। तो कोई दुष्ट व्यक्ति का संग हम करेंगे तो उसके जो गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे संग के कारण। तो ठीक उसी प्रकार से भक्तों का संग कोई व्यक्ति करता है तो भक्तों के गुण उसमें आ जाएंगे। ये बहुत एक सूक्ष्म बात है कि कैसे चेतना का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मुझे सब मुझे मराठी में तो क्या मानता स्थानांतरण होता है। आता माझ्या खिशामध्ये पैसे आहेत, नाही आहेत असं उदाहरण देतो, तर माझ्या खिशामध्ये पैसे असले आणि मी कोणाला दिलं, त्यांनी घेतलं माझ्याकडून, तर स्थानांतरण झालं पैशांचं। कसं? मी माझ्या हाताने घेतले आणि दिले त्याला। पण श्रद्धा आणि चेतनाचं स्थानांतरणासाठी असं शारीरिक स्पर्शाची गरज नाही आहे। कोणी जर माझ्या सोबत राहिला, माझी त्यांनी वाणी ऐकली, वाणीमधून माझी चेतनाचं स्थानांतरण होत आहे, माझी दृष्टी आहे त्याच्यामधून होत आहे, माझं वागणं आहे, माझं बोलणं त्याच्यामधून माझं चेतनाचं स्थानांतरण होत आहे। आणि वाणी अशी आहे की टेप रेकॉर्डरमध्ये पण ते आम्ही ऐकलं की त्याच्या माध्यमेने पण आमची चेतनामध्ये बदल होते। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेपरेटेड एनर्जी। जैसे जीव कृष्ण का एक विभिन्न एक अंश है, मतलब थोड़ा अंतर हो गया। कैसे? इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जब हम कोई माइक में बोलते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है, बाद में रिकॉर्डिंग कहीं और दूसरी जगह सुनाया जाता है, हमारी आवाज़ है, हमारी वाणी है, लेकिन वहाँ हम शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, फिर भी हमारी वाणी उपस्थित है उधर। हमारी वाणी हमारी शक्ति है, तो हमारी शक्ति हमसे भिन्न हो गई, अभी वो है उधर, वो संबंध तो है हमारा, वो क्योंकि वो मेरी वाणी है परंतु भिन्न है। उसी तरह से जीव भी भगवान की विभिन्न शक्ति, विभिन्न अंश। तो ऐसे विभिन्न शक्ति के द्वारा भी चेतना का स्थानांतरण होता है। किसी व्यक्ति को देखने मात्र से भी उसकी चेतना होती है कभी कभी। इसीलिए दूसरे व्यक्तियों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनके चप्पल आदि नहीं पहनने चाहिए। जो पुराने जमाने के साधु हैं और आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना आसन लेके घूमते हैं, किसी दूसरे के आसन पर बैठते नहीं हैं, वो रेलगाड़ी में या कहीं भी सफ़र करते हैं तो अपना आसन लेके जाते हैं और फिर आसन लगा के उस सीट वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उस दूसरों के बैठे हुए स्थान में बैठने से उनके जो प्रभाव हैं वो हमारे ऊपर आ सकते हैं। इसलिए दूसरों को कपड़े पहनना, चप्पल पहनना, है ना, ये सब इससे चेतना का स्थानांतरण होता है। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन आजकल कहाँ संभव है ये सब देखना। तो इस प्रकार से यदि किसी जैसे व्यक्ति की चेतना होती है वैसे उसके उससे संग करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है अनेक तरीकों से। तो यदि कोई किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है भक्ति के प्रति, तो उसको कहाँ से मिली वो श्रद्धा? कभी इस जन्म में, कभी आगे, या तो फिर पिछले जन्मों में उस व्यक्ति ने भक्तों का संग किया होगा, अन्यथा उसके अंदर श्रद्धा नहीं हो सकती। तो किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, इसका ये प्रमाण है कि उसने कोई संग किया है भक्तों का पहले कभी, तो इस जन्म में या पिछले जन्मों में, इसलिए उसके अंदर श्रद्धा है, नहीं तो श्रद्धा संभव नहीं है। अच्छा, अधिरस प्रभु ने कहा कि पुण्य करने से श्रद्धा मिलती है, सही है? क्यों नहीं सही है? पुण्य क्या है? भौतिक कार्य है। पाप क्या है? भौतिक कार्य है। पाप और पुण्य दोनों ही एक सिक्के के दो बाजू है, ज्यादा फर्क नहीं है। पाप और पुण्य दोनों करने से हमको जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के रहना ही पड़ता है। फर्क इतना ही है कि पुण्य करने से थोड़ा भौतिक सुख मिलेगा, थोड़ा ऐश्वर्य मिलेगा, पाप करने से कष्ट मिलेगा, बस इतना ही अंतर। परंतु दोनों ही चक्र में फंसे हुए हैं और दोनों भौतिक होने के कारण वो भक्ति के उद्गम नहीं हो सकते, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक है। कोई आध्यात्मिक वस्तु किसी भौतिक वस्तु से उत्पन्न नहीं हो सकती, बल्कि भौतिक वस्तुएं आध्यात्मिक वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं। परंतु इसके विपरीत उल्टा नहीं हो सकता है। जहां जीव है, जीव शक्ति है, वहीं से तो कुछ उत्पादन होता है ना, उसके बिना नहीं होता है। तो भौतिक पुण्य से भक्ति नहीं उत्पन्न होती, केवल भक्ति से। इसलिए पहले क्या बताया था हमने, भक्ति कहां से आती है? भक्ति से। और ये भक्ति कहाँ उपलब्ध है? भक्तों में। तो भक्तों के संग किसी व्यक्ति ने किया है तो उसको श्रद्धा होती है। तो ये अधिकार है भक्ति के लिए कि उसने पूर्व कभी भक्तों का संग किया हुआ होना चाहिए और उस संग के कारण उसको श्रद्धा होती है। थोड़ी बहुत तो श्रद्धा होती है, आदौ श्रद्धा। इसलिए जब हम लोग प्रचार करते हैं अलग अलग तरीकों से, कभी नाम संकीर्तन करते हैं सड़कों में, कभी पुस्तक वितरण, कभी प्रसाद वितरण, कभी कथा आदि करते हैं, तो इसमें क्या होता है, विविध प्रकार के लोगों को लाभ मिलता है। जो पहले से श्रद्धालु हैं उनको बड़ा आनंद आता है, वो भक्ति में आगे बढ़ लेते हैं। तो जो पहले से अभी भक्त हैं वो कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन आदि सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति में और आगे बढ़ते हैं। जो जिनके अंदर श्रद्धा है परंतु अभी तक भक्त बने नहीं, उनको अवसर नहीं मिला ये सब जानने के लिए, तो वो जब भक्तों से जुड़ जाते हैं, श्रवण कीर्तन आदि भक्तों के संग में करते हैं, तो उनके हृदय में ये भक्ति रूपी कमल खिल जाता है। उनको बड़ा उत्साह मिलता है कि हमें भी भक्त होना है, फिर वो भक्त बन जाते हैं। और तीसरे श्रेणी के लोग हैं जिनको वो सुकृति नहीं है, पहले ज्यादा संग नहीं किया है, थोड़ा किया है, नहीं तो सत्संग में आते नहीं, नहीं तो कीर्तन सुनते नहीं, नहीं तो ऐसे स्थान में उपस्थित न होते जहां से कि संकीर्तन पार्टी गुजर रही है। भगवान की योजना से ही हो जाता है नहीं? कौन सा श्लोक? भ्रमण कैसे कौन निर्धारित करते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्ररूढानि मायया। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान होकर सबके भ्रमण का निर्देशन करते हैं। तो जब हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्त जा रहे हैं सड़कों में, तो कोई एक व्यक्ति इधर से जा रहा होता है और हरिनाम सुनता है, तो ऐसे क्यों हुआ कि उसने उसी समय पे वहाँ वो आ गया जबकि हरिनाम करते हुए लोग जा रहे थे? दूसरे गली में क्यों नहीं था वो उस समय? भगवान की योजना है, क्योंकि उसने पहले कहीं सुना होगा कुछ, तब आगे उसको अवसर मिलता है और सुनने का। इसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं। अज्ञात अवस्था में ऐसी सुकृति प्राप्त करना, और ऐसे अनेक जन्मों की अज्ञात सुकृति की पूंजी बढ़ते बढ़ते फिर व्यक्ति उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि जब उसको फिर भक्तों का संग मिलता है भगवान की योजना से, भगवान ऐसे मिला देते हैं भक्तों को ऐसे व्यक्ति से, और फिर ऐसे भक्तों के संग में आकर फिर वो भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए क्या कहा जाता है, भक्तों के भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं या वैष्णव मिलते हैं, और गुरु और वैष्णवों की कृपा से भगवान मिलते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में फिर हमें आदेश मिलता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इस प्रकार से जो अधिकार है हमारे लिए भक्ति में आने के लिए, वो क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए, और वो श्रद्धा भक्तों के पूर्व किए हुए भक्तों के संग पर निर्भर है, सबसे पहली बात। और श्रद्धा को रूप गोस्वामी बोलते हैं रुचि, भक्ति में रुचि होनी चाहिए। तो रुचि कहाँ से आती है, जीव गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा से। तो श्रद्धा कहाँ से आती है, भक्तों के संग से, श्रद्धालु लोगों के संग से। तो ये क्रम है। तो अज्ञात सुकृति करते करते फिर वो अज्ञात रूप से भक्ति करने लगता है व्यक्ति। और दूसरा अधिकार क्या है कि मध्यम तपस्या, मध्यम वैराग्य। तो जो लोग, जिन लोगों ने, तो ऐसे भक्त को भी अधिक तपस्या करने की भी वृत्ति नहीं होती है, परंतु जिनके अंदर भक्तियोन्मुखी सुकृति नहीं है, भक्ति की सुकृति नहीं है, परंतु ज्ञानोन्मुखी सुकृति है, योगोन्मुखी सुकृति है, तो उनका झुकाव, उनकी श्रद्धा उस तरह से होगी। तो वो उस तरह के लोगों से संग करना पसंद करेंगे, उनके संग में आकर उनकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, बढ़ेगी, फिर वो मायावाद के रास्ते में, योग के रास्ते में श्रद्धालु बनेंगे। अंदर से बैठे हुए भगवान उनको श्रद्धा देते हैं, योग अभ्यास करो, इसमें आगे बढ़ो, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो। वैसे उनकी श्रद्धा है पूर्व, उनकी सुकृति, उनकी जो किए हुए कर्म ऐसे हैं, तो उनको उस तरह का संग मिल जाता है। तो ये अधिक तपस्या करना, ये ज्ञान मार्ग के लिए अधिकार है, भक्ति के लिए नहीं। जो बहुत अधिक तपस्या करता है उसका हृदय कठोर हो जाता है, बल्कि भक्ति में भक्त का हृदय कोमल हो जाता है। अधिक तपस्या करने से ये संभव है कि व्यक्ति को घमंड आने लगता है, परंतु सच्चे भक्ति करने से व्यक्ति विनम्र हो जाता है। तो पृथु महाराज तो भक्त थे, फिर भी वो इस तरह की तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वो युग वैसे था। इस कलयुग में ये सब हमारे लिए संभव नहीं है, हम तो ऐसी तपस्या कर नहीं सकते जिसका वर्णन पृथु महाराज के बारे में किया गया है। यदि हम करेंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे बस, और कोई इसमें पर प्रश्न है, ठंडी में जाके क्या करना चाहिए, ठंडे जल में नदी में जाके यहाँ तक क्या बताया, आकंठ मग्न शिशिरे उदके, उदक मतलब पानी, शिशिर शिशिर ऋतु में ठंडे में क्या करना चाहिए, आकंठ यहाँ तक कंठ तक मग्न डूबा हुआ रहना चाहिए ठंडे पानी में। कोई कर पाएगा ऐसे? एक बार स्नान करना ठंडे पानी से ठंडे मौसम में वो बहुत हो जाता है, बस हो जाता है ना। तो ऐसे पानी में यहाँ तक खड़े होना, और उसके बाद क्या कहते हैं, बारिश वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए हमें, आसार शाट मतलब बारिश में ही खड़े हो जाना, बस बारिश से हटना नहीं, अंदर नहीं आना, रही बारिश हो रही चलो अंदर जाते नहीं, बारिश में बैठे रहो, बारिश हो रही या भीगते रहो, क्या हालत हो जाएगी ये आजकल हम ऐसे करेंगे तो
फंगस,
हाँ
शरीर में फंगस हो जाएगी,
मरी जाएंगे। और क्या कहा है, ग्रीष्म पंचतपा भी रहा, पंचतपा पांच प्रकार की अग्नियां होती हैं, उनमें से एक अग्नि क्या है कि सूरज, सूरज के उष्णता में बैठना, सीधे जाके ऐसे स्थान में बैठना जाके अगर सूरज की कड़ी धूप हो रही है और अपने चारों ओर अग्नि लगाना, एक दो तीन चार, चार दिशा में अग्नि निकट और ऊपर से सूरज की अग्नि, इसको पंचताप बोलते हैं। और नीचे की जमीन भी गर्म और ऐसे में दिन भर बैठना तपस्या करना गर्मी में, ऐसे पृथ्वी महाराज ने किया, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए हम पृथ्वी महाराज और अन्य जो बड़े बड़े राज ऋषि या अन्य ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनका वर्णन हम भागवत में रामायण में आदि पढ़ते हैं, उनकी नकल हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले ही तात्पर्य के पहले ही लाइन में कहते हैं, जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे भौतिक कल्मश से वो शुद्ध हो सकें। परंतु भक्तों को शुद्ध होने के लिए हरि नाम पर्याप्त है, कृष्ण कथा पर्याप्त है, प्रसाद पर्याप्त है, इसलिए इतनी कड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में एक छोटी सी कहानी बता के समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये आकंठ मग्न शिशिरे उदके, इसके बारे में एक बार मैंने कहानी बताई होगी, अकबर और बीरबल के बारे में किसी की याद है, आकंठ मग्न शिशिरे उदके, याद है किसी को?
बंदर
में
अकबर और बीरबल एक बार सर्दी के मौसम में टहलते रहते हैं, तो वहाँ पे पानी का एक कुंड होता है, तो कुंड के पास फिर अकबर कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इस ठंडी में, इतनी ठंडी है तो इस ठंड में अगर कोई रात भर गर्दन तक डूब के बैठेगा तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो ये ढिंडोरा पिटवाया जाता है। फिर एक बहुत गरीब ब्राह्मण,
कई लोग आते हैं
लेकिन
वो ज्यादा समय टिक नहीं पाते, एक तो हाथ लगा के ही भाग जाता है, इतना ठंड होता है पानी, इतना ठंड होता है, दूसरा तो चले जाता है आदमी लेकिन जल्दी से चले आता है, ऐसे करके बहुत सारे लोग आते हैं, फिर अंततः एक आ जाता है व्यक्ति, पूरे पानी में चले जाता है, और फिर
रात भर वो ठंड पानी में रहता है और अगले दिन आके राजा से मिलता है, वो कहता है कि मैं रात भर वहाँ पे था, तो एक पहरेदार भी रहता होगा। तो फिर वो राजा पूछता है अकबर कि ये रहा था क्या रात भर पानी में? वो हाँ ये रहा था, ऐसे उसको विश्वास नहीं होता। तो पूछता है और वहाँ आस पास में कहीं आग अग्नि वगैरह था क्या? नहीं, कहीं था, वो दूर में एक दीप जल रहा था आपके महल के पास, महल में
नहीं, हाँ एक मंदिर था। तो राजा ने पूछा कैसे होने, तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं नहीं इसने चीटिंग किया, धोखा दिया। क्या किया? उसने गर्मी का फ़ायदा लिया। कौन से गर्मी का? वहाँ सामने एक मंदिर था दूर में, तो उसके ऊपर एक दीप था। वो दीप को देखता रहा, तो दीप को देख के उसे उष्णता गर्मी उसने प्राप्त कर ली, इसलिए अपने शरीर को अपने आप को गर्म रखा, इसलिए उसको इनाम नहीं मिलना चाहिए। तो फिर
व्यक्ति बहुत हताश होता है और बाद में बीरबल से जाके तो फिर बीरबल का सब सुनने के बाद फिर कहता है ठीक, मैं आपके लिए आपकी मदद करता हूँ। तो फिर कुछ दिनों के लिए बीरबल आते ही नहीं राजा से मिलने के लिए। तो फिर राजा पूछता है कि अकबर पूछता है बीरबल कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। तो फिर एक व्यक्ति बोलता है कि बीरबल अपना खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी?
नहीं, ऐसे होता है कि एक बार बीरबल अकबर को बुलाते कि हमारे घर में प्रसाद के लिए आ जाइए, भोजन के लिए आ जाइए। तो दिन निर्धारित होता है, कितने बजे आऊँ? 12 बजे आइए। तो अकबर आ जाता है 12 बजे ठीक, और फिर बात करते रहता है बीरबल से। तो बात समय बीतता है और ये भोजन का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर अकबर ने पूछा भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ अभी बन रहा अभी पक रहा है। और थोड़ा समय बीत जाता है, अरे बीरबल क्या हो गया? पक रहा है। ऐसे 12 के बजे 3 बज जाते हैं। अब अकबर से रहा नहीं जाता, अरे क्या बोल रहे हो, 3 घंटे से बोल रहे हो पक रहा है, क्या पक रहा है, कहाँ मुझे दिखाओ कहाँ पका रहे हो। तो फिर क्या देखते हैं वहाँ जाके?
फिर पीछे वो अपने एक पेड़ होता है, पेड़ के टहनी पे उन्होंने एक मटका बांध के रखा होता है और नीचे ज़मीन पे आग लगाई होती है। तो ये देखकर अकबर हंसने लगता है कि ऐसे कभी तुम्हारा खाना पकेगा क्या? फिर बीरबल अकबर से कहते हैं कि हाँ उसी तरह से जिस तरह से वो व्यक्ति वो दीप से गर्मी लेके अपने आप को गर्म कर रहा था, उसी तरह से मैं सोच रहा था कि ये भी पक जाएगा। तो फिर अकबर को उस समय पे होश आया और
उसने अपने घर के अंदर जैसे ऊपर ना, ऐसे समझो ऊपर हमने मटका टांग दिया उसमें जिसमें चावल है पकाने के लिए रखा है, और पकाने के लिए आग नीचे यहाँ पे छोटा सा आग लगा दिया इधर ज़मीन के ऊपर कि हम चावल को पका रहे हैं। तो अकबर ने देखा है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी इसकी गर्मी ऐसे जाके चावल को पकाएगी क्या? हाँ क्यों नहीं पका सकती, यदि वो नदी में खड़ा हुआ आदमी दूर वाले दीप से गर्मी लेके अपने आप को गर्म रख सकता है तो निश्चित ही ये चावल भी इससे गर्मी लेके पक सकता है ना। तब अकबर को पता चला कि कितना अन्याय किया है उस व्यक्ति के प्रति, तो उसको बुला कर फिर पुरस्कार देते हैं। तो ये कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमको ठंडे पानी में यहाँ तक रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो अलग बात ठीक। और यदि हमारे भक्ति को भी हमें तीव्रता, भक्ति मार्ग में हमें तीव्रता से बढ़ना है तो हमारी अग्नि भी उतनी तीव्र होनी चाहिए, उतना हमारा उत्साह होना चाहिए। यदि हम ढीले ढीले रह गए कि अग्नि वहाँ अग्नि यहाँ है चावल वहाँ है, तो हमें कितने समय लग जाएगा भक्ति में प्रगति करने के लिए, अनेक जन्म लग जाएंगे। तो भक्ति में जितना उत्साह हमारा है, जितनी तीव्रता इच्छा की है, अर्थात जितनी तीव्र हमारी अग्नि है, तो उस तरह से जल्दी से पकेगा, अर्थात हमारी भक्ति पक जाएगी जल्दी तरह से हम परिपक्व हो जाएंगे भक्ति में, जितना हमारा उत्साह है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइबो रुद्ध हरि प्रभु।
कह रहे थे कि जो चेतना का स्थानांतरण होता है दूसरे सर वस्तु से, जब हम उसको दूसरे लोगों का ये करते हैं, तो ये भक्तों के जीवन में कितना ये करना चाहिए? कोई कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी का चप्पल लिए हो गया, फिर किसी दूसरे भक्त आपके पास डबल है तो वो ले लिया, या कपड़ा
ऐसे नहीं लेना चाहिए। भक्तों का एक दूसरे का चप्पल वप्पल नहीं पहनना चाहिए। आजकल कई आश्रमों में भी ऐसे होता है, मैं देखा है, खास करके विदेशों में भी, यहाँ भी, लेकिन ठीक नहीं है। हम किसी बहुत बड़े भक्त का प्रसाद ले सकते हैं रूप में, उस तरह से लेना वो अलग बात है, लेकिन आपस में एक दूसरे के सब चीज़ों को इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कपड़े, चप्पल,
यही हम देख सकते हैं कि भगवान का जो भक्तों का संग में आने के बाद भी जो उनका चेतना हमारे लिए जैसे बद्ध स्थिति रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं। शुद्ध भक्तों का संग भी करते हैं तो उतना हम लोग को श्रद्धा या भक्ति या विश्वास हमारा उतना गाढ़ नहीं होता है जितना हम संग कर रहे हैं उनका साथ। तो ये इसका क्या कारण है?
मतलब भगवान का संग और भक्तों का संग?
हाँ, भगवान को और भक्तों का संग में ही रहते हैं, करते हैं, और जैसे श्रद्धा और विश्वास जो भक्तों को है वो चेतना का हम लोग को, क्योंकि
हम ले नहीं पाते,
ले नहीं पाते,
वो भी हमारी पात्रता उतनी कभी नहीं है। उतना ही हम ले सकते हैं जितना हमारे शक्ति है लेने के लिए। तो हम जितना वो देने वाला तैयार हो, लेने वाला पात्र ना हो, तैयार योग्य ना हो, तो फिर ले नहीं सकता उतना। तो लेने वाले की भी क्षमता होनी चाहिए, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे हम भक्तों का संग करेंगे, हम कुछ भक्ति करेंगे, वैसे वैसे उसको स्वीकार करने की क्षमता भी बढ़ती रहेगी। हरे कृष्णा। तो आमटे के कार्यक्रम में आमटे के भक्तों ने और आप सब ने भी और बेलगाम के भक्तों ने भी बहुत परिश्रम किया, नहीं? तो आमटे के कितने भक्त यहाँ पर हैं? आमटे सब भक्त लोग खुश हैं क्या? आमटे के भक्त खुश हैं? दो दिन का इतना बढ़िया उत्सव किया, हाँ?
एकदम खुश है,
एकदम खुश। हर एक गांव में ऐसे होना चाहिए, नहीं? हर एक गांव इस तरह से होना चाहिए भक्ति में, फिर सब वैकुंठ हो जाएगा। ये आमटे नाव वाला कसा? आमटी, आमटी पसंद आ लगा? आमटी हाँ, नाव वाला कसा? आमटे, आमटी पसंद आमटे जाला का ऐसा का? हाँ, माहित नहीं। तो बहुत सेवा आप सब ने किया हम वो उत्सव, दो दिन के उत्सव के लिए अद्भुत सेवा आप सब की, जिन्होंने सेवा किया बहुत अच्छा सेवा किया।
पूरण पोली का प्रसाद,
हाँ, सबको 4000 पूरण पोली किया। चान चान चान। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।